તારીખ 12/7/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 51
बात सुनी तो स्वामी हो वेद ज्ञान जो करता है उसको होता है, यानी आत्मा को जानता है उसमें स्वामी हो है और उसका अधिकारी भी मोक्षार्थ होता है। एक अपेक्षित बात है कि मोक्षार्थीपणा आए बिना आत्मज्ञान होने का कोई संभव नहीं है। इसी अपेक्षा को रख करके आगे की बात जो है उसको समझना। प्रथम ही आत्मा को जानना, फिर उसका श्रद्धान करना ये था, फिर आचरण करके उसमें लीन होना और उसी प्रकार जो मोक्ष अवस्था निष्कर्म अवस्था रूप जो साध्य है अपना मोक्ष, ऐसा उसमें अभेद शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति सिद्धि होती है, तो उसी प्रकार से उत्पत्ति इसकी होती है, किसी भी अन्य प्रकार से इसकी उत्पत्ति नहीं होती। ये सामान्य रूप से जो बात कही आचार्य महाराज ने, ये बात सामान्य रूप से कही। अब इसी बात को विशेष रूप से कहते हैं कि मोक्षार्थी होकर आत्मा को जानना, आत्मा की श्रद्धा करना, आत्मा में लीन होना और उसी प्रकार साध्य की सिद्धि है। दूसरे प्रकार साध्य की सिद्धि नहीं है तो वो कार्य किस प्रकार से संपन्न होता है, इसको विशेष रूप से स्पष्टतया यहाँ पर समझाते हैं। कि आत्मानुभव करना है तो कैसे करना, स्वानुभव कैसे करना, इस प्रश्न का एक स्पष्ट उत्तर है। प्रश्न भी डायरेक्ट और इसका उत्तर भी डायरेक्ट, सीधा प्रश्न है, सीधा इसका उत्तर है। कि प्यारे आत्मा को, जब आत्मा को अनुभव में आने वाला जो अनेक प्रकार के भेदभाव हैं उसके साथ मिश्रितपणा होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणपणा से यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान की प्राप्ति से, आत्मज्ञान से प्राप्त जो होता है श्रद्धान, क्या आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला श्रद्धान, आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला श्रद्धान सीधा नहीं, आत्मज्ञान पूर्वक। लेकिन आत्मज्ञान कैसे होता है ये बात पहले बताइए। ऐसा आत्मज्ञान होता है तो श्रद्धान के लिए कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। आत्मज्ञान हुआ वही आत्मश्रद्धान का प्रोसेस है। और आत्मज्ञान का प्रोसेस क्या है तो ये भेद ज्ञान करना वो आत्मज्ञान का प्रोसेस है। कैसे भेद ज्ञान करना, किस प्रकार से भेद ज्ञान करना, उसका स्पष्टीकरण भी आचार्य महाराज ने, इस पर हम थोड़ा विचार करें। आत्मा को अनुभव में आने वाला जब जब मैंने कब हर हमेश निरंतर आत्मा को अनुभव में आते हैं। क्या अनुभव में आते हैं? अनेक पर्याय रूप भेद भाव। यहां ऐसा नहीं कहा आचार्य महाराज ने कि आत्मा को ठंडी का अनुभव होता है, ठंड का आत्मा को गर्मी का अनुभव होता है, आत्मा को मिठाई का अनुभव होता है, स्वाद का अनुभव होता है, गंध का अनुभव होता है, ऐसा नहीं था। परद्रव्य की बात नहीं लिया। देखिए विचार करने लायक चीज है। ऐसा क्यों लिया? वेद ज्ञान के प्रकरण में दो तीन बात हमारे यहां गुरुदेव की कृपा से चलती है कि देहादि पर संयोग से भेद ज्ञान करना, पर पदार्थों से भेद ज्ञान करना, रागादि प्रभावों से भेद ज्ञान करना, और एक समय की सुधाशुद्ध कुछ भी पर्याय हो इससे भी मैं भिन्न दृष्टि का विषयभूत परम पदार्थ परमात्मा मैं हूं, ऐसा स्वरूप का अनुभव करना, तो सुधनि का विषयभूत है, दृष्टि का भी विषयभूत है, भूत शब्द लगता है। ध्यान प्रश्न कहां कहां आता है? तो इसमें से एक बात को क्यों उठाया आचार्य महाराज ने? स्वानुभव के लिए परद्रव्य से भेद ज्ञान करने की चर्चा नहीं की, और एक समय की शुद्ध पर्याय से भी भिन्न होने की कोई चर्चा नहीं की है। इधर तो पाठ को अनुसरण करके चलते हैं ना। जो शास्त्र का पाठ है उसमें क्या चीज पड़ी है सामने जो चीज है तो उसमें तो ये लिखा है कि आत्मा को अनुभव में आने वाले जो अनेक पर्याय रूप भेदभाव है, अनेक पर्याय का उसको अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं। अनेक पर्याय में विभाव के तो असंख्य प्रकार है लेकिन जाति एक है। विभाव के पर्याय है उसके प्रकार राग द्वेष मोह रति अरति घृणा, अनेक प्रकार के विभाव भाव होते हैं लेकिन इसकी सभी की जाति एक विभाव जाति के पर्याय है। और दूसरा अनुभव में आने वाला ज्ञान का पर्याय है जिसकी विभाव जाति नहीं है। ज्ञान की जाति विभाव जाति नहीं है, है क्या? ज्ञान की जाति विभाव जाति है? ज्ञान की विभाव जाति नहीं है तो मैं प्रश्न करता हूं। अभी गुरुदेव की टेप सुना, सुना कि नहीं सुना? क्या आया इसमें? परसत्ता अवलंबी ज्ञान वो आत्मा का पर्याय नहीं है, तो पर भाव है स्वभाव नहीं है। क्या किया? परकीय भाव चलता था ना, परकीय भाव की परिभाषा चलती थी, अपना भाव और पर भाव प्रज्ञा छीन डालने की बात चल रही थी ना 300 गाथा में। और आधार दिया बनारसी दास की परमार्थ रचनी का। परमार्थ रचनी का में बनारसी दास ने ये बात लिखी है कि परसत्ता अवलंबी ज्ञान मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। गुरुदेव ने साफ कहा कि वो बंध को साधता है, बंध का कारण है, ऐसा बोले। और यहाँ हम कहेंगे कि ज्ञान है वो स्वभाव जाति का पर्याय है, तो उसमें क्या अंतर है? ज्ञान में और ज्ञान में दो बात क्यों आती है? जब बात दो आती है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि ये किस प्रकार से दो बात आती है, आखिर में बात क्या है, वास्तव में क्या बात है। तो ज्ञान में जो ज्ञान का वलन पर सन्मुख है, यहां तो परमार्थ रचनिका में जो बात चली है वो तो ज्ञानी का उपयोग की चली है, सम्यक ज्ञान है उसकी बात चली है। कि कोई भी ज्ञानी हो फिर भी इसका उपयोग पर सत्ता का अवलंबन करता हो तो बंध साधक होता है, मोक्ष साधक नहीं होता है। और कोई भी ज्ञानी इसको मोक्ष मार्ग कहते नहीं, जानते भी नहीं, तो वहां वो उपयोग भी पर सत्ता को अवलंबन करते हुए चारित्र की अपेक्षा से एकत्व रूप से तो नहीं करता है, वहां भी भिन्न रहता है, फिर भी इसका निषेध किया, बंध साधक कह दिया। क्यों? कि पर सन्मुख होना, ज्ञान दशा में पर सन्मुख उपयोग का होना, यह भी अपराध है, बंध साधक है, आकुलता का उत्पादक है, मलिनता का उत्पादक है, और स्वभाव से ये विपरीत कार्य है। स्वभाव अंतर्मुख रहने का है, पर सन्मुख रहने का स्वभाव नहीं, इसलिए उसका निषेध किया। जिस तरह राग का निषेध किया जाता है परभाव कह करके, क्योंकि वो भी आत्मा का परिणाम है, लेकिन भेद ज्ञान के प्रकरण में उसको परभाव ठहराया, ऐसे ही परसत्ता अवलंबन ज्ञान को भी प्रभाव में गुरुदेव ने डाल दिया। यहाँ तो मुमुक्षु है आंशिक रूप से, पूरी की पूरी नहीं। भगवान भाव पूरी होती है क्या? ज्ञान की एक अंश में प्रसन्नमुखता होती है और एक अंश में स्वसन्मुखता रहती है। तो प्रसन्नमुखता का निषेध है तो निषेध है, इसलिए वो बंद हो जाएगा, निषेध होने से उसका क्षय हो जाएगा और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर हम ऐसा विचार करें, अब थोड़ी बात सूक्ष्म करनी है हमें, कि जहां लगे केवल ज्ञान नहीं होगा वहां तक तो वैसा ही रहेगा ना, तो उसमें ऐसे भाव में किस प्रकार का दोष आता है? अभिप्राय का दोष आता है। क्या? अभिप्राय का दोष आता है। ये अभिप्राय का प्रकरण आजकल हमारे यहां बहुत चलता है। आप आए थे उस वक्त शायद, चला थोड़ा बहुत, तो फिर तो काफी दिनों चला, ये बहुत चला, दूरदृष्टि प्रकाश में से चला, इसलिए इसमें से चलाया कि सोगानी जी का चर्चाओं में प्रत्युत्तर देने का यही दृष्टिकोण हमेशा रहा, तो अभिप्राय प्रधानता से उत्तर देते थे। जैसे कि ऐसा ही कोई प्रश्न, जैसा भगवान भाई ने किया, ऐसा ही कोई प्रश्न करेंगे हमारे मन में, कि निर्विकल्प दशा में अनुभव होता है इसलिए निर्विकल्प दशा हमें प्राप्त हो
अच्छी बात है, तुम चाहते भी हैं, किंतु पहले तो विकल्प होता है ना, इसके पहले तो विकल्प में रहना पड़ता है ना, इसके पहले तो आत्मा का विकल्प होता है ना, क्योंकि ये पहले होता है या ऐसा होता है, ऐसा जो वजन जाता है, ये वजन अभिप्राय को सूचित करता है। ऐसा ज्ञान करना ठीक बात है कि जहां तक सदमस्त अवस्था है आंशिक रूप में उपयोग बाहर जाएगा अनिवार्य रूप से, लेकिन जाएगा तो सही ना। ठीक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपका। श्रद्धा और अभिप्राय साथ में रहता है क्या? अभिप्राय ज्ञान की पर्याय है और श्रद्धा श्रद्धा गुण की, दोनों अलग अलग गुण की पर्याय होने पर भी दोनों को साथ में रहना एक आपस की मैत्री है श्रद्धा ज्ञान की। ये मैत्री हमेशा हमेशा रहती है। अब एक मुमुक्षु प्रश्न कर सकता है, आपकी जगह रह करके एक प्रश्न उठाऊंगा मैं, कि जब हमारी श्रद्धा विपरीत है तो हमारा अभिप्राय भी विपरीत रहता है, तो हम क्या करें कि हम अभिप्राय को ठीक करें जिससे हमारी श्रद्धा ठीक हो जाए। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान जो यहां कहा, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान। स्वाध्याय क्यों क्यों करते हैं? गुरुदेव ने हमें स्वाध्याय में क्यों लगाया? जहां भी अपना मंडल हो वहां से स्वाध्याय चलना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा थी। और चलता भी है, जहां भी चलता है, नहीं चलता है वहां नहीं भी चलता है, तो जैसा परिस्थिति का सही होगा। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा तो है कि स्वाध्याय तो हमेशा मुमुक्षुओं को शास्त्र का साथ में बैठ करके करना चाहिए, और हम करते भी हैं। क्या कारण है इसके पीछे? गुरुदेव ने क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि स्वाध्याय करके, सत्संग करके, आपस में बैठ करके हमारा अभिप्राय को हमें ठीक करना है। गलित अभिप्राय को सोच समझ कर हम बदल सकते हैं, अभिप्राय बदलने से हमारी श्रद्धा बदल जाएगी, यही कारण है। अब बताइए इसमें क्या प्रश्न है? इसलिए गुरुदेव ने ये व्यवहार जो है स्वाध्याय का हमारा, इस व्यवहार को चालू किया। सनातन जैन धर्म की दिगंबर परंपरा में तो स्वाध्याय की परिपाटी है ही। आप जाओगे हिंदी भाषी क्षेत्र में, गुजराती क्षेत्र में तो मंदिरें कम हैं दिगंबर के, लेकिन राजस्थान में जाओ, एमपी में जाओ, यूपी में जाओ, जहां भी मंदिर है भगवान का, वहां शास्त्र और शास्त्र स्वाध्याय की एक अलग व्यवस्था बैठने की वो लोग रखते हैं। शुरू से ही है वो बात, 150 साल 200 साल पहले के मंदिर में सब ये बात मिलेगी आपको कि भगवान के मंदिर में शास्त्र भी रखते हैं, शास्त्र भंडार होते हैं, और शास्त्र स्वाध्याय करने की अलग जगह होती है, व्यवस्था होती है कि आप बैठ करके चौकी लेकर के शास्त्र स्वाध्याय अकेले करो या कोई 2-4 या 25-50 आदमी साथ में बैठ करके करो, कितने भी जने हों। लेकिन ये परिपाटी है हमारे यहाँ, ये परिपाटी प्राय लुप्त हो गई थी, तो गुरुदेव ने फिर से चालू किया इस जमाने में। नहीं, फिर ऑटोमेटिक बदले। आत्मज्ञान के काल में एक ही समय में होती है, और मुमुक्षु की भूमिका में मिथ्या श्रद्धा का अनुभाग मैंने रस कट जाता है, यानी मिथ्यात्व की ताकत टूट जाती है, इसलिए पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है। देखिए, मैंने प्रयोजन सिद्धि में ये बात बहुत लिया है, उसमें हर जगह वो बात है। पहले उपशम सम्यक दर्शन क्यों होता है? उपशम मैंने मिथ्या श्रद्धा का दब जाना। कौन दबता है? हाँ? कमजोर है वो दबता है। कोई बलवान दबता है? कभी बल वाला कभी कोई नहीं दबेगा। कमजोर है उसको दबना पड़ेगा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि की यही हालत है। मिथ्यात्व में बल बहुत है, मिथ्या श्रद्धा भी पूरी शक्ति से ऊंधा काम करती है, उल्टा। तो उसको पहले कमजोर करनी पड़ती है। ये कमजोर करने में किस किस प्रकार से वो कमजोर हुए मुमुक्षु की भूमिका में, इस पर जो सारा आर्टिकल जो लिखा है वो प्रयोजन सिद्धि है कि इतने इतने प्रकार से दर्शनमोह का अनुभाग टूटता है। तो दर्शनमोह का अनुभाग मैंने रस, मैंने ताकत कम हो जाने से एक परिस्थिति ऐसी आती है कि उसको दबना पड़ता है। जब यह उपशम होता है तो उदय खलास हो गया। उदय उपशम, उपशम होवे तो उदय न होवे, उदय होवे तो उपशम नहीं होवे, तो उसका उदय खलास हो गया। उदय खलास होते ही जो श्रद्धा है वो शुद्ध रूप परिणाम बनने लगी, क्योंकि अभिप्राय ठीक हो गया था, ज्ञान में अनुभव हो रहा है। तो उसी वक्त सम्यक श्रद्धान पैदा हो जाता है। सम्यक श्रद्धान के लिए दूसरा कुछ कार्य नहीं करना पड़ता। ज्ञान को ठीक करो, श्रद्धा स्वतः ठीक हो जाएगी। ऐसी बात है, अभिप्राय को समझना चाहिए। अभिप्राय ऐसे नहीं पलटता, एक अभिप्राय बन जाता है वो जल्दी पलटता नहीं है। इसके लिए ठोस कारण मिलता है तो पलटता है। जैसे हमारा कोई व्यक्ति विशेष से अभिप्राय बन जाता है तो कोई समझाने आते तो मान लेते क्या? हम नहीं मानते, जल्दी नहीं मानते। दो चार बात नहीं, अपन को कोई ऐसी बात विश्वास करने लायक मिलती है तब हम हमारा अभिप्राय बदलते हैं। वहां तक किसी के कहने से नहीं बदलते। अपना अनुभव देख लीजिए, हैं? सारी दुनिया विरोध करे गुरुदेव का, कुछ कोई नहीं, सारी दुनिया विरोध करे, लेकिन हमें गुरुदेव का प्रत्यक्ष परिचय है क्या? हमें गुरुदेव का प्रत्यक्ष परिचय है। और कोई भी कहे विरोध वाले, क्या हमारे मुमुक्षु कहे, हमारे विद्वान कहे, तो हम नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या कि नहीं? हम गुरुदेव को जानते हैं, हम गुरुदेव को पहचानते हैं। कोई भी कहेंगे हम नहीं मानने वाले। ऐसा होता है कि क्यों? कि हमने प्रत्यक्ष परिचय करके ये अभिप्राय पक्का किया है, तो इसमें कोई तिरस्कार नहीं होगा। ऐसी बात है। ऐसा है कि श्रद्धा का विषय तो एक आत्मा ही होता है, श्रद्धान का विषय, सम्यक श्रद्धान का विषय तो एक आत्मा ही होता है। नव तत्व की श्रद्धा, स्व पर की भिन्न भिन्नता की श्रद्धा, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, ये जो तीन प्रकार लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान का कथन है। क्या आपने तत्वानुशीलन पढ़ी? क्या नहीं पढ़ी? पड़ी पड़ी। इसमें एक प्रकरण लिखा है हमने, विवीक्षा 36 8 प्रकरण लिखा है उसमें, एक विवीक्षा 36 36 प्रकार की विवीक्षा होती है कथन में। श्रद्धा का श्रद्धा प्रधान कथन, श्रद्धा का ज्ञान प्रधान कथन, श्रद्धा का आचरण प्रधान कथन, जो कल आया था कि जिसका आचरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे आत्मा का श्रद्धा करना चाहिए कि जिसका आचरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। आचरण प्रधान कथन, सुख प्रधान कथन, पुरुषार्थ प्रधान कथन, 5 मुख्य गुण हैं। जिससे हम आत्मा और आत्मत्व को समझने का प्रयास करते हैं। ये पांच मुख्य गुण हैं, इसमें ज्ञान सबसे ज्यादा मुख्य है, क्योंकि समझना भी ज्ञान से होता है और समझाया भी ज्ञान पूर्वक जाता है। तो पांच गुणों में आपस में एक दूसरे की प्रधानता से विविक्षा मैंने कथन करने का है तो 25 प्रकार होता है। श्रद्धा का 5 प्रकार, तो ज्ञान का भी 5 प्रकार लगता है, आचरण में भी 5 प्रकार लगता है, पांचों में 5-5 प्रकार लगे तो 25 हो जाता है। फिर जो हमने भेद अभेद 27-25 जो 27 और द्रव गुण और पर्याय, द्रव का द्रव की मुख्यता से कथन होता है, द्रव का गुण की मुख्यता से कथन होता है, द्रव का पर्याय की मुख्यता से भी कथन होता है, और तीनों का ऐसा होता है तो 3-3-9 ये होता है 27-9। 36 प्रकार की विविक्षा मुख्यतया शास्त्रों में चलती है। किसी भी कथन आवे तो इस 36 में से पकड़ लेना, तो फिर हमारे समझ में घोटाला नहीं होगा कि ये ज्ञान की बात है या श्रद्धान की बात है, वरना हम ज्ञान की बात को श्रद्धान में ले जाएंगे, श्रद्धान की बात को ज्ञान में ले जाएंगे। श्रद्धान में वो साथ साथ तो रहता है, सभी गुण एक साथ परिणमन करता है, अनंत गुण एक साथ पूरा आत्मा का परिणमन होता है, उसमें श्रद्धा ज्ञान मुख्य गुण है, और दोनों की मैत्री में अभिप्राय और श्रद्धा साथ में रहने का प्रकार चलता है हमेशा हमेशा। ये एक वैज्ञानिक परिस्थिति है। नहीं, श्रद्धा को श्रद्धा का रूप है, ज्ञान को ज्ञान का रूप है, एक का रूप दूसरे को आरोपित कर सकते हैं। नहीं, क्या है कि रूप होता है लेकिन स्वरूप नहीं होता है। क्या, चलो ये भी चर्चा कर ले आज, वो भी चर्चा आज कर ले, जब आपने प्रश्न उठाया है तो वो भी चर्चा कर ले। जैसे कि अस्तित्व है, तो अस्तित्व है उसको उसका स्वरूप होना, क्या उसका स्वरूप होना, लेकिन जो चैतन्य पदार्थ है उसका चैतन्य रूप है अस्तित्व का, और जड़ परमाणु है उसका जड़ रूप है अस्तित्व का, तो रूप होता है लेकिन स्वरूप नहीं होता है, क्या। दूसरा दृष्टांत लीवे कि ज्ञान जानता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है कि जानना, और ज्ञान का रूप अस्तित्व भी है कि है, ज्ञान है इसका एक रूप है। ऐसे एक गुण का स्वरूप अपने आप का होता है और अनंत गुण का रूप भी होता है उसका। चिद्विलास में ये बात लिया, एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है, लेकिन एक गुण दूसरा गुण रूप कभी होता नहीं। श्रद्धा है, तो श्रद्धा का कार्य श्रद्धा करना है, ज्ञान का कार्य श्रद्धा करना नहीं है। ज्ञान का कार्य जानना है, लेकिन जान करके विश्वास करता है वो श्रद्धा का रूप है, क्या। जान करके हे उपाधि करते हैं वो आचरण का रूप है, और ज्ञान में निराकुलता है वो सुख का रूप है। तो ज्ञान को अनेक गुण का रूप है, दूसरे दूसरे गुण का, लेकिन ज्ञान ज्ञान गुण रूप है, ज्ञान श्रद्धा गुण रूप कभी होता नहीं है, वरना तो सब सब गुण एक गुण रूप हो जावे, एक गुण का नाश होने से सभी गुण में चौपट हो जाएगा। तो अगुरु लघुत्व सभी में है, जब आत्मा का अगुरु लघु गुण है तो इसका रूप भी सभी गुण में है, तो एक गुण दूसरा गुण रूप हो सकता
नहीं, जैसे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं हो सकता, ऐसा एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं हो सकता। नहीं, उसका रूप बोलो या स्वरूप बोलो, दो बात अलग अलग छांटो। इसका श्रद्धा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, क्या ज्ञान का स्वरूप श्रद्धा हो जाता है कि वो कभी नहीं बनने वाला। रूप आपस में है, ज्ञान को श्रद्धा का रूप मिलता है और श्रद्धा को ज्ञान का रूप मिल सकता है। उसी वक्त असहाय है, किसी की सहाय कोई गुण लेते नहीं, ऐसी बात है। तो ये जो पदार्थ का जो विज्ञान है, ये साइंस है, वो तो साइंस को तो अच्छी तरह समझ ले रहे हैं कि क्या साइंटिफिक पोजीशन क्या है। जीव नामक एक पदार्थ है, हमारी आत्मा है, उसका साइंटिफिक पोजीशन क्या है। फिर उसका एक गुण के दूसरे गुण में आपस में एक्शन रिएक्शन क्या है, और एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ के बीच में निमित्त निमित्त संबंध से एक्शन रिएक्शन क्या आता है, किस हद में आता है, किस अवस्था में आता है, कब आता है कब नहीं आता है, उसमें प्रयोजन जहां भी हो, जहां हमारी भूल होती हो वहां हमारा प्रयोजन है। वो हमारी भूल सुधार लेना, ये हमारा प्रयोजन वहां इतना होता है। जहां भी हमारी भूल होती है वहां हमारा प्रयोजन होता है, भूल सुधारना हो तो हमारा प्रयोजन है। तो भ्रांति छूटना ये हमारा प्रयोजन है, भ्रांति को टालना है समझ करके, ऐसा। शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन अभिप्राय को ठीक करना, समीचीन करना, सच्चा अभिप्राय को केरवना, भले देर लगे, अभिप्राय बदलने में देर लग सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो एक केरवनी है ज्ञान की, एजुकेशन है, तो उसको अभिप्राय को ठीक कर लेना, ये शास्त्र स्वाध्याय का मतलब है, मकसद है, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय हम करते हैं। ज्ञान की पर्याय है, निर्णय भी ज्ञान की पर्याय, अभिप्राय भी ज्ञान की पर्याय, लक्ष्य भी ज्ञान की पर्याय, उपयोग भी ज्ञान की पर्याय, लब्ध भी ज्ञान की पर्याय, बहुत भरा है ज्ञान का वैभव, बहुत है ये। तो अभिप्राय पूर्वक निर्णय बनता है, जब अभिप्राय बदलता है तो फिर से ही निर्णय आ सकता है। तो ये कारण कार्य का प्रोसेस होता है ज्ञान। तो अभिप्राय बदलने से फिर श्रद्धा बदलेगी। हाँ, अनुभव के काल में सांस में होता है, और मुमुक्षुता के काल में उसका ताकत मिथ्या, अभी मिथ्या श्रद्धा की ताकत टूट जाती है। ये अभिप्राय की चर्चा बहुत हमारे यहाँ चली है, कैसे मैं लाया हूँ इधर, दिलचंद भाई के पास है, आपको सुनना हो तो कॉपी कर लेना, तो कॉपी कर लेंगे। लाया था तो मैं अनिल भाई के लिए बम्बई, लेकिन मैं बम्बई देना भूल गया है एयरपोर्ट पे, तो इधर आ गई, तो फिर बोला कि चलो तुम कॉपी कर लेना। तो मैं 8-10 घंटा करीब चलिए करता हूँ, मैंने करीब 15-20 दिन चलिए, 15-20 घंटे एक ही विषय को लेकर के। तो इसके कितने पहलू हैं, तो कहाँ कहाँ ऐसी बात आती है, किस किस ढंग से हमारे शास्त्र में आती है, और अध्यात्म में कहाँ कहाँ इसका प्रयोजन है, इसका महत्व है,
ये परिणम में
अभिप्राय का बहुत महत्व है,
बहुत बहुत महत्व है। देखिए
हमारा सामने कोई भी बात आती है तो अगर हम बुद्धिमान होंगे, विचक्षण होंगे, तो पहले ये विचार करेंगे, आदमी कुछ भी बोलता होगा उसका अभिप्राय क्या है पहले समझ लें,
क्या विचार करेंगे।
हमारे प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में भी यही बात चलती है
कि कोई
होलसेल बिजनेस चलता है, उसमें कोई बात व्यापारी आता है,
वो आता है खरीद करने के लिए, वो बात क्या करेगा, देखिए
तुमको इतना माल बेचना है किस भाव में बिकेगा,
जो बहुत विचक्षण व्यापारी होगा वो समझ लेगा कि ये बेचने को नहीं आया है खरीदने को आया है,
उसको भाव दूसरा बताओ, क्या बेचने का भाव नहीं बताएगा, वो खरीदने का भाव बताएगा, अपने बेचने का भाव बताएगा, इसका बेचने का भाव नहीं बताएगा। अच्छा दूसरा बहुत दृष्टांत मिलेगा कि हमारे कोई हितेच्छु है, वास्तव में हमारे वडील होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, तो हमें कोई कठोर वचन से कह करके भी बचा लेते हैं।
तुम इतना नहीं समझते, मूर्ख हो क्या तुम,
इतना नहीं समझते कितना नुकसान जाएगा तुमको, आपको अपने को पता चलता है, अच्छा हुआ अपने को बड़ा नुकसान ऐसे बचाया, तो उसने जो भी कठोर वचन किया उसका हम उपकार मानेंगे, क्या करेंगे, अच्छा हुआ आपने ये बात कही वरना हम तो मर जाते, तो हमको दुख नहीं लगता है, वरना कोई कठोर बात बोल देवे तो हम तो बोलना बंद कर रहे हैं, मुंह फेर लेंगे, लेकिन अभिप्राय देखते हैं कि इसका अभिप्राय है वो कठोर कहने का नहीं है, अपना नुकसान से अपने को बचाने का है, और बहू को सास है तो दाढ़ में से कुछ प्रशंसा कर दें तो है? बहू समझ लेती है कि ये सास मेरी प्रशंसा नहीं करती है, मुझे ठंडा डाम देती है, क्या समझती है, है? तो सास का अभिप्राय को पकड़ती है हमेशा कि मेरे उनकी पड़ती तो है नहीं, है तो हम आमने सामने, हमारी तो आपस में बनती नहीं पड़ती नहीं, अब ये मेरी प्रशंसा कहां से करेगी, तो प्रशंसा नहीं करती है, मेरी बुराई करने का एक अच्छा तरीका भी है इनके पास, तो हर जगह हम वचन को नहीं देखते, हर जगह हम अभिप्राय को देखते हैं, वो सही है, वो व्यवहारु है, वो प्रैक्टिकल है, और ऐसे अभिप्राय को समझने से हम धोखे में नहीं रहते। ऐसा नहीं बनेगा, बताइए आप, तो बनता हो तो बता देना, बताइए, गलत अभिप्राय देंगे दूसरी बात है, गलत अभिप्राय देंगे दूसरी बात, तो उसमें अभिप्राय दूसरा है और मायाचार में दूसरी प्रवृत्ति दूसरी है, ऐसी बात है, अभिप्राय के साथ तो प्रधान रहता है। अब देख लीजिए, थोड़ा गहराई से विचार करके समझ लीजिए उसको, उसके साथ ही जाएगी हमेशा, ये साइंस है, ये जीव के गुण का एक विज्ञान है, साइंस है, वो कभी बदल नहीं सकता, किसी हालत में नहीं बदल सकता। अभिप्राय तो ज्ञान की पर्याय है और भावना अकेली ज्ञान की पर्याय नहीं है, क्या भावना में रुचि भी है, भावना में आचरण भी है, भावना में पुरुषार्थ भी है, और भावना में ज्ञान भी है। मैंने बहुत से गुण की एक साथ पर्याय अनुकूल होती है उसको भावना हम कहते हैं। एक गुण की पर्याय वो नहीं है, अभिप्राय एक गुण की पर्याय है, जबकि भावना में बहुत से गुण शामिल होते हैं। हाँ, अभिप्राय के अनुरूप भावना, भावना के अभिप्राय अनुरूप होता है, कभी अभिप्राय के अनुरूप भावना बनती है, परस्पर पूरक भी बनता है, एक दूसरा का कारण भी बनता है कभी कभी। जैसे कि सत्पुरुष के समागम से हमें आत्म कल्याण की भावना होती है, और कभी हमें आत्म कल्याण की भावना होने से हम सत्पुरुष का समागम में जाते हैं, ढूंढते हैं सत्समागम को हम कि हमारी भावना की पुष्टि मिले। तो आपस में कभी पूरक भी कोई बातें बनती है, ऐसी वो बात है। हर बात को बहुत गहराई से सोचनी पड़ती है, एक सब बातें छिछरी नहीं है, गहरी गहरी बात है। तो उसके अनुभव में जाकर के कि क्या होता है, कैसे होता है, किस हालत में होता है, उसका वास्तविक रूप है क्या है, उसमें कारण कार्य क्या है, उसका बहुत मंथन चले, चिंतन चले, जब उसका निर्णय होता है कि ये बात ऐसी है, ऐसी है, ऐसा। गुरुदेव के परिचय में अगर कोई विशेष गुरुदेव का व्यक्तित्व, अंतरंग व्यक्तित्व हमें समझने में मिला है तो वो बात पर मिला है। हम तो गुरुदेव के प्राइवेट चैम्बर में जाते थे चर्चा करने के लिए, अकेले एकांत में, तो ऐसे कोई भी प्रश्न निकाले, परिणाम विषयक ऐसे किसी स्टेज का, ज्ञानी के स्टेज का, मुमुक्षु के स्टेज का, मुमुक्षु के स्वरूप सन्मुखता के स्टेज का, किसी भी मत का, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूरा नहीं करे उसके पहले तो गुरुदेव उत्तर दे देते थे। कितना चिंतन होगा, कितना मंथन होगा उनका, ये बात हमने देखी है गुरुदेव के अंतरंग व्यक्तित्व में, कि हमारा प्रश्न प्रारंभ होवे आधा चले तो बात तो पूरी समझे आधा में से और उत्तर दे देवे कि ये बात है, उसने ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। फौरन प्रश्न पूछो और गुरुदेव को कोई विचार करना पड़े, कुछ विचार करके उत्तर देवे, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। उतना चिंतन मंथन गुरुदेव को चल रहा है। तो ये हमारी अयोग्यता है, जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है वो हमारी अयोग्यता है, वो तो जो है सो है। जब इनके परिचय में हमको इनका अंतरंग व्यक्तित्व इतने हद तक मालूम हुआ है कि कहीं से भी प्रश्न उठाओ, विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इतना विचार वो कर चुके हैं, उसका निर्णय निश्चय ले चुके हैं कि आपने प्रश्न पूछा नहीं पूछा इसका सही उत्तर फौरन दे देते हैं, विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने वो तय अपने आप में चिंतन से ज्ञान में उतने आगे थे, तैयार थे। तो इनकी कोई बात हमारी समझ में नहीं आवे तो ये अपनी ही कमी है, वो तो जो है सो है। जहाँ हमारा मतलब होता है वहां तो हम अभिप्राय करते हैं, जहाँ हमारा प्रयोजन होता है वहां तो हम अभिप्राय पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, बताइए। तो हमारा ध्यान नहीं गया इसका ये कारण कि प्रयोजन पर हमारा जितना वजन होना चाहिए इतना वजन नहीं था, हमारा प्रयोजन का दृष्टिकोण स्थूल रहा हमेशा, इतना सूक्ष्म नहीं हुआ इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है क्या? ऐसी बात है। जहां भी देखिए, आप नमक का धंधा करते थे, हजारों लाखों बोरी नमक की भर करके वो बेचते थे, तो लूज नमक खरीदते थे आप और बोरी भरते थे, फिर बोरी की सिलाई करते थे, उसमें जो सूतली का धागा है इसका हिसाब करते थे कि नहीं करते थे? बताइए, करते थे कि नहीं करते थे? सूतली का धागा की कितनी कीमत है? घर में पड़ा है तो अपन फेंक देते हैं आंगन में, कोई कीमत नहीं लगती है कि नहीं? घर में नहीं लगती है, व्यापार में लगती है, व्यापार में पैसा का प्रयोजन है। क्योंकि 1 लाख बोरी में कितनी चाहिए कि 1 लाख बोरी में पूरी एक गांठ चाहिए, एक गांठ 10 मण की होती है। मैंने उसका 500 किलो लगता है, 500 किलो का इतना पैसा लगता है, 1 किलो का 25 रुपया, 500 किलो का 25 बाय 500 गिन लो इतना रुपया लगता है, इतना खर्च में उधारते हैं। एंट्री पड़ती है कि नहीं पड़ती है खरीदी के काम? अगर हिसाब नहीं गिने तो घाटा पड़ जाएगा। सूतली का धागा का क्या? एक चना कुरमुरा बीचने वाला डोरा, डोरी को बांधता है ना, कच्चा डोरा को, वो धागा का भी हिसाब करता है, तो उसको लाना पड़ता है 1 किलो 2 किलो, उसका भी वो हिसाब करता है कि 1 महीने में 10 रुपया तो उसका लगता है हमको। तो जहां भी हमारा प्रयोजन है वहां हम एक धागा का भी हिसाब करने वाले बनिए हैं। लेकिन व्यापार में बनिए पक्के हैं, धर्म में बनिए पक्के नहीं है, कच्चे हैं, ऐसी बात है, है? ये भी तलाश कर लेना ये भी तलाश कर लेना कि यहाँ क्यों आते हैं, उसमें भी प्रयोजन होता है, अलग अलग प्रकार का प्रयोजन तो होता है लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है। वो लक्ष्य है वो बहुत अलग अलग, उसका भी बहुत जुड़ा जुड़ा है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रसंग में उसका अर्थघटन होता है। लक्ष्य का निर्णय में भी लक्ष्य होता है और उपयोग जाता है और जगह तो लक्ष्य चला गया ऐसा भी कहते हैं, ऐसा बहुत उसका अर्थघटन है। प्रयोजन में तो क्या है कि अपना मतलब जो है, मकसद है, वो भीतर में रहता है, वो लक्ष्य में रहता है, प्रयोजन लक्ष्य में रहता है हमेशा। तो कभी मान का, स्थान का, या किसी के साथ संबंध का, संबंध रखने का, नहीं रखने का, तोड़ने का, जोड़ने का, और इससे भी हमारा बेटा बेटी अच्छे परिवार में संबंध हो जाए क्या? बहुत उसकी तो लंबी थोड़ी बहुत बात है, है? क्योंकि ये अच्छी सोसाइटी है, अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं, तो हमारा जो संबंध है आगे जाकर के अच्छे परिवार में बनेगा, या हमारे कोई मुश्किल आ जाएगी तो मदद मिलेगी, कई प्रकार के जो आत्मकल्याण को छोड़ करके अभिलाषा हो, भावना हो, राग हो, प्रयोजन हो, तो ये सही प्रयोजन नहीं है, गलत प्रयोजन है, और ये दर्शन मोह को हमेशा हमेशा तीव्र करने वाली चीज है। क्या कौन सा नुकसान है उसमें? मिथ्यात्व को दृढ़ करने का उसमें नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान है। फिर तो हो ही गया, तो तीव्र तीव्र मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व ही तीव्र मिथ्यात्व का एक स्टेज होता है, तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ऐसी बात है। इसलिए इस धर्म स्थान में तो
आत्म कल्याण के अलावा कोई प्रयोजन हमारा होना ही नहीं चाहिए, ये बात है। इतना पक्का हो जाना चाहिए बनिया, प्रयोजन के विषय में पक्का बनिया बस, कि कोई कैसी भी बात करे हमारा आत्म कल्याण को लाभ है कि नुकसान है, हम पहला ये देखेंगे। बात कहीं से भी किसी भी प्रकार की आएगी हमारे सामने, आ सकती है, हमें हमारा आत्म कल्याण को देखना है कि उसमें हमारा आत्म कल्याण को कहां स्पर्श होता है, कैसे हमें उसमें लाभ नुकसान का प्रसंग पड़ेगा, उसी के अनुसार हम हमारा वर्ताव वलण सब कुछ रखेंगे और बात हमें नहीं देखनी है। हाँ, विरोध नहीं होगा तो अनुमोदना हो जाएगी, विरोध नहीं होगा तो अनुमोदना हो जाएगी, तो अनुमोदना से नुकसान होगा। ये हमारे आनंद भाई कहते हैं कभी कि कोई आदमी ऐसे निष्पक्ष है ही नहीं जगत में, अपना मतलब का पक्ष तो सभी को है और है ही, चाहे वो मतलब आत्म कल्याण का हो, चाहे वो मतलब आत्म कल्याण के छोड़ करके अन्य हो, पर उसका पक्ष होता है हमेशा। आत्म कल्याण को देख लेना और आत्म कल्याण के पक्ष में हमेशा रहना, निष्पक्ष तो जो वितराग है निष्पक्ष होते हैं, सर्वथा वितराग है। कुंद कुंदाचार्य भी दर्शन पावड़ में लिखा, क्या लिखा कि वस्त्र का एक धागा रख करके अगर कोई मुनिपणा मानेगा मनाएगा निगोदम गच्छेदी, क्या लिखा क्या लिखा है? एक संक्रमण काल में वो पैदा हुए, उसी काल में जिनेश्वर के नाम से दूसरा अभिप्राय चालू हो गया, मत कहो अभिप्राय कहो, तो उड़ाया है, बहुत कठोर भाषा में उड़ाया है। आचार्य थे, वीतरागी संत थे, फिर भी विरोध किया, असत का उत्थापन सत का स्थापन ये छद्म अवस्था में हुए बिना रह सकता नहीं, ज्ञानी को आचार्य को मुनि को भी। मुमुक्षु को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो काफी बहुत रागी है इसे, वो तो अल्प राग वाले का दृष्टांत दे दिया, ज्यादा राग वाले का तो नहीं होना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमेशा सत्य के पक्ष में आत्म कल्याण के पक्ष में मुमुक्षु को रहना, यही उनके कल्याण के लिए ठीक है। अच्छा, वीतराग होते हैं सर्वज्ञ होते हैं, उसको तो केवल ज्ञान ऐसा है, ज्ञाता दृष्टापना पूर्ण हो गया है, सिद्ध भगवान को कुछ भाषा भी नहीं, और केवली को होती है तो बिना उच्छा होती है, उसमें सत असत का स्थापन उत्थापन आता है लेकिन भाव पूर्वक नहीं आता है, वो तो पूर्व कर्म का फल है वो तो। इसलिए तो यहां पर अपने को ये बात चली कि तीन प्रकार के भेद ज्ञान होते हुए भी भावों से भावों में भेद ज्ञान करने की बात क्यों चली, थोड़ी अधिक गहनता से इसका विचार करना है हमें, कि जो तीव्र मिथ्यात में पड़े हैं, भेद ज्ञान कौन करते हैं? मंद मिथ्यात वाले। भेद ज्ञान एक प्रयोग है, कल रात्रि को चला था, और प्रयोग जो है वो तीव्र मिथ्यात वाले कर नहीं पाते, मंद मिथ्यात वाले कर सकते हैं। यहां तो प्रयोग होता है, अभी ये बात प्रयोग की चलेगी, तो प्रयोग कौन करता है कि मंद मिथ्यात वाले करते हैं, ये बात थोड़ी नहीं है, अब तक जो चलिए इससे थोड़ी नहीं है, तो विचार में आई है अभी। नहीं, प्रयोग में आने वाले जीव की पोजीशन क्या है, तो मंद मिथ्यात्मा हो उसको ये प्रयोग हो सकेगा। मिथ्या श्रद्धा की दृढ़ता नहीं है, मिथ्यात्व सम्यक श्रद्धा तो हुई नहीं, लेकिन मिथ्या जो श्रद्धा है उसको मंद कर दी है, ताकत थोड़ी है, वही प्रयोग कर पाएगा। तो तीव्र मिथ्यात्व की स्थिति में अपना भावों को देखने का प्रयोग हो ही नहीं सकता, उसका तो इतना मिथ्यात्व का जोर है कि शरीर में एक इंजेक्शन की सोई सुई लगती है ना, तो इतना बड़ा शरीर है, क्या कितना बड़ा है, 5 फुट का 5.5 फुट का जो शरीर है इसमें सुई कितनी जगह पे लगती है, एक पॉइंट सुई की, एक सुई लगने से पूरा इधर खड़ा हो जाता है, एक जगह पे आ जाता है, इतनी जगह में, कितनी जगह में आ जाता है, उतना तो देहाध्यास रहता है और संयोग में भी उतना उसका ममत्व रहता है, जो भी अपना पूर्व कर्म अनुसार संयोग जितना भी जैसा भी जिसको हो उसमें उतना लगाव रहता है, उतना रस रहता है तीव्र मिथ्यात्व के कारण कि वो अपने भावों का भेद ज्ञान करने की परिस्थिति में आ ही नहीं सकता। तो उनको ये कहना पड़ता है कि तुम देह से भिन्न हो, तुम पैसा से भिन्न हो, मकान से भिन्न हो, आबरू कीर्ति से भिन्न हो, ये सब बहुत स्थूल पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, तुम चेतन पदार्थ हो, उसकी भिन्नता को तो सोचो, उसको मंद मिथ्यात में लाना पड़ता है तभी ये प्रयोग में आ सकता है। इसलिए अनुभव का प्रयोग भेद ज्ञान का भावों में होता है, द्रव्यों में नहीं, यही कारण है इसका। आए ख्याल में क्या बात है, वरना एक प्रश्न हम खड़ा कर देवे कि जब तीन प्रकार से भिन्न होने की बात आती है तत्व ज्ञान के अभ्यास हम करते हैं ना, तो तीन बातें हमारे सामने आती है कि देहादि के जितने भी पर पदार्थ है उससे आत्मा भिन्न है, राग आदि प्रभाव से भी भिन्न है, और शुद्ध नहीं का विषयभूत परमात्म पद तो एक समय की शुद्ध पर्याय से भी भिन्न है। अब हमें शुरुआत कहां से करना है, ये प्रश्न उठाएंगे हम। तो कि तुम कर किस परिस्थिति में हो, तुम तीव्र मिथ्यात में हो या तुम मंद मिथ्यात में हो, दो में से एक मिथ्यात में तो होगा ही होगा क्योंकि संयोग तो हुआ नहीं। तीव्र मिथ्यात में हो तो तुम देहादि से भिन्न हो, ऐसा ही थोड़ा चिंतन मनन करो, थोड़ा मिथ्यात को मंद करो, विचार कर करके, पढ़ पढ़ करके, सुन करके, लेकिन प्रयोग तो हो ही नहीं पाएगा, प्रयोग तो मंद मिथ्यात्म काल में होगा, जो प्रयोग का फल स्वानुभव है, आत्मज्ञान है, मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक दर्शन होने वाला है इसमें। इसलिए वो बात आचार्य महाराज ने यहाँ भावों की ली है, द्रव्यों की नहीं ली है, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन का अधिकार है, स्वानुभव आने की बात है, तो उसका पूर्व स्टेज भावों के भेद ज्ञान का होता है, द्रव्यों का नहीं होता है। ओवर टाइम हो गया।